बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर परमेश्वर कृपा आज के प्रसंग में सक्षण। कल प्रभु राम तमसा नदी के किनारे पहुंचे थे, सारे अयोध्या वासी जितने साथ आए थे सब साथ हैं। रात्रि हुई, सब सो गए। प्रभु राम सूत से कहते हैं, रथ तैयार रखिएगा, किसी समय भी निकल चलेंगे। इन लोगों को बहुत समझाने पर भी ये वापस नहीं लौटेंगे, अतएव हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, सब सोए हुए थे। मध्यरात्रि के बाद प्रभु राम सीता लखन जाग ही रहे थे। रथ में बैठे, अयोध्या नगरी की ओर रथ को मोड़ा, थोड़ी दूर अयोध्या नगरी की तरफ गए, उसके बाद तमसा नदी पार की तो जंगल में प्रवेश करते हैं। गोरा सम्मिलन हुआ है, परम मित्र है, श्रृंगपुर का राजा है, नीच जाति का है, लेकिन प्रभु कहाँ जाति पाति देखते हैं, तो हृदय देखते हैं। गुरु के हृदय में परम स्नेह है, इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, अतः प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे अयोध्या नगरी आपकी, वैसे ही इसे भी समझिएगा, यही रहिएगा। गुह का दिया हुआ ना कुछ खाते हैं, दिनचर्या पर रात्रि व्यतीत करते हैं। एक प्रभु राम सो जाते हैं, अलग से माँ सीता सो जाती है, लक्ष्मण और गोराज रात्रि भर जागते हुए आपस में चर्चा करते हैं। लक्ष्मण सारी कथा सुनाते हैं, किस प्रकार हमारा वन में आना हुआ है, क्यों आना हुआ है। गोराज के मन में अनेक सारी बातें उठी, मित्रता के कारण, स्नेह के कारण। लक्ष्मण जी एक एक बात का निवारण करते हैं। गोराज के जिन प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं, सार्वजन उसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है। मानो लक्ष्मण जी द्वारा गाई हुई गीता गीत जो गुराज को वे समझाते हैं। बड़ी मार्मिक बातें हैं सार्वजन। कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो करेंगे। वहाँ से निकल के उन्हें कहा है, गंगा नदी पार कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में सार्वजनिक गुह का केवट का प्रसंग नहीं है। केवट का प्रसंग रोचक प्रसंग रामचरितमानस में ही है। यहाँ पर गुहराज नौकाएं मंगवाते हैं और प्रभु राम पार जाते हैं। सुभद्र को भी वापस भेजते हैं, गुराज को भी वापस भेजते हैं। बेचारे अनमने, मन से नहीं बेबने वापस लौटते हैं। प्रभु राम प्रयाग पहुँचते हैं, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में भोजन इत्यादि जो भी कुछ जैसा भी कुछ करना था वह किया। उनसे पूछते हैं, मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए, निर्जन स्थान जहाँ मैं आसानी से रह सकूँ, मेरी पहचान ना हो, मेरा पता ना चले। महर्षि भरद्वाज भी कहते हैं, प्रभु यहीं क्यों नहीं रह जाते, सब कुछ है यहाँ पर। दोनों जगहों पर प्रभु राम यही कहते हैं, अयोध्या के पास है, यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस प्रायः बनी रहेगी और मुझे एकांत में रहना है, जैसे एक साधक की भावना होनी चाहिए। यदि साधक चुनो हम घर पर छोड़ के एकांत में नहीं जा सकते, तो घर में ही एकांत ढूंढना चाहिए, पर बिना एकांत के आप सोचो कि साधना सफल हो जाएगी, शास्त्र सहमत नहीं है। सब में रहते हुए भी एकांत का किस प्रकार से अनुभव किया जाता है ये साधना सिखाती है। घर में रह के भी आपको किस प्रकार से एकांत में रहना है ये साधना सिखाएगी, परमेश्वर कृपा सिखाती है। आपके अंदर तड़प इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, व्यवस्था परमात्मा करता है। साधना में साधु परमेश्वर की असीम अथवा अपार सहायता मिलती है। देवी देवताओं की सहायता, हनुमान जी की सहायता, सबकी सहायता, बिन मांगे सहायता मिलती है, बशर्ते कि आप साधना में ईमानदार हैं, एक निष्ठ हैं साधना के प्रति। प्रभु राम एक साधक बन के निकले हैं, तो तीनों ही साधक साधना के लिए निकले हुए हैं, इसी दृष्टि से देख रहे हैं। संसारी ऐसी बातों को संघर्ष की दृष्टि से देखता है, साधक साधना की दृष्टि से देखता है। जहां संघर्ष होता है साधक में, किसी आश्रम में किसी संत से कहा कि महाराज हर जगह जहां भी हम कार्यरत होते हैं, लोग कार्यरत हैं, एक दिन की छुट्टी उन्हें मिलती है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं। कितनी सुंदर मांग है साक्षी, और उससे कहीं अधिक सुंदर उत्तर है संत का। मांग है उनकी सभी कार्यालयों में, दुकानदार तक भी संडे क्लोज्ड, छुट्टी होती है, दफ्तरों में छुट्टी होती है, फैक्ट्री से छुट्टी होती है, एक आश्रम भी एक ऐसा है जहां छुट्टी नहीं होती। सत महात्मा कहते हैं भाई, जहां छुट्टी होती है सप्ताह में एक बार, वो तो सब मजदूर हैं। हम मजदूर नहीं हैं, हम साधक साधना के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यहां छुट्टी का अर्थ साधना से छुट्टी, और साधना में कोई छुट्टी नहीं है साधक जन, साधना में बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। कितना सुंदर उत्तर देके तो संत समझाते हैं, संसारी के लिए ऐसी बातें संघर्ष और साधक के लिए साधना, तीनों साधना करने के लिए निकले हुए हैं। महर्षि भरद्वाज ने कहा, राम जैसा स्थान आप चाहते हो वैसा स्थान थोड़ी दूरी पर है, चित्रकूट पर्वत है, वहां चले जाओ। कोई जाने का भी नहीं, देवजित स्थान है, खाने पीने को भी वहां प्रचुर है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। तो बहुत समय भगवान श्री चित्रकूट में ही बिताते हैं। तो आज की चर्चा तो यही तक, कल चर्चा चली थी सरक्षर माँ सुमित्रा जो यति लक्ष्मण जी को अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान कर रही है। सुमित्रा जी का चरित्र देवी सज्जनों यदि देखा जाए तो माँ कौशल्या एवं कैकेयी से कहीं उच्च, इस रामायण में तो वर्णन इस प्रकार का आता है कि सुमित्रा सामने आती है तो लक्ष्मण जी को उपदेश देती है। रामचरितमानस में ऐसा नहीं, प्रभु राम लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ मां से विदाई ले आओ, होना तो यूं चाहिए था, राम जी को जानते हुए होना तो यूं चाहिए था कि चलो दोनों मैया के दर्शन करके आते, मैं उनसे आपके लिए इजाजत मांगूंगा, लक्ष्मण साथ जाना चाहते हैं, मां सुमित्रा आज्ञा दें, इजाजत दें, तो मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं किया, राम स्वयं कैकेयी को दो बार मिले हैं, कौशल्या को एक बार मिले हैं और सुमित्रा को एक बार भी नहीं, ऐसा रामचरितमानस में है। सुमित्रा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। लक्ष्मण को ये नहीं कहते कि जाओ वहां सुमित्रा से जाके आगे ले आओ, जाके विदाई ले आओ, मानो निर्णय तो हो चुका हुआ है। राम इज सो कॉन्फिडेंट मां सुमित्रा के लिए, और किसी के लिए हो ना हो, मां सुमित्रा के लिए इतने कॉन्फिडेंट हैं, मां कभी पूछेगी भी नहीं, डांटेगी इससे तो क्या करने यहां आया है। जब राम ने इस प्रकार की अनुमति दे दी है तो मैं कौन होती हूं आज्ञा देने वाली या अनुमति देने वाली। राम जी को मां सुमित्रा के प्रति इस प्रकार का विश्वास। कहते हैं साधु जनों, राज्याभिषेक के अनेक वर्ष बाद मां सुमित्रा एक दिन प्रभु राम के पास गई अकेली। प्रभु राम जहां कहीं भी थे खड़े हो गए, चरणवंदन की, मतीश्वरी आप? हाँ, मैंने सुना है तुम दाता हो, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं दिया, क्या प्रमाण है कि तुम दाता हो? प्रभु राम सुमित्रा से कहते हैं, भगवती मैं सबके लिए दाता हो सकता हूं, लेकिन तेरे सामने तो भिखारी हूं, तुझसे सदा लिया ही लिया है, जो कुछ तूने पहले मुझे दिया हुआ है मैं उसी का ऋण अभी तक नहीं चुका सका, मैं तेरे सामने अपना मुख या आंखें ऊंची करके नहीं देख सकता, तूने जन्मते ही अपने पुत्र अनंत लक्ष्मण को, लोग देते हैं तो सुशील देते हैं, छोटी छोटी चीजें देते हैं, लक्ष्मण जी महाराज का एक नाम है अनंत, तूने तो अनंत को मुझे सौंप दिया, मैं जन्म जन्मांतर तक तेरा ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा, कुछ देने का मां तुम्हें मैं सोच ही नहीं सकता, सब देने वाला हूं मैं, सब ऐसा मुझे मानते हैं, एक सुमित्रा को छोड़ के। ये भगवान श्री मां सुमित्रा को कह रहे हैं। मां सुमित्रा भक्तजनों, समर्पण और सुमित्रा एक ही बात है, सिनोनिम्स, कोई अंतर नहीं। संत महात्मा यहां कहते हैं कि समर्पण करने वाले को भी मत हो सकता है, मैंने समर्पण किया। सुमित्रा अपने जीवन से सिखाती है समर्पण का भी जिसे मत नहीं है सुमित्रा, समर्पण का भी जिसे अभिमान नहीं, कर्तृत्व नहीं, नो डूअरशिप इवन आफ्टर सेल्फ सरेंडर, कंप्लीट टोटल सरेंडर, मानो सहज से ही सब कुछ स्वभाव से ही ऐसा हो गया, कोई उसमें सुमित्रा को प्रयत्न नहीं करना पड़ा। मां कहती हैं, ऐसा क्यों कहते हो राम, मैंने क्या दिया है तुम्हें, क्या था मेरे पास जो मैं तुम्हें देने का सोच सकती, क्या तुम भूल गए हो, मां कौशल्या ने जो मुझे प्रसाद दिया था उसी के लिए लक्ष्मण पैदा हुआ है, मानो ये तेरा अंश है और तेरा अंश तुझे लुटाते क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, ये सुमित्रा की भावना है। समर्पण तक कभी कोई लेश मात्र भी अभिमान सुमित्रा में नहीं। मां सुमित्रा से शिक्षा ले रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके विकार रहित होके मन वचन एवं कर्म से प्रभु सीताराम जी की सेवा करोगे तो तेरे हृदय में उनके प्रति विशुद्ध एवं अविरल प्रेम पैदा होगा। मानो मातेश्वरी बता रही हैं हम सब साधकों को, आप चाहते हो कि आपका हृदय प्रभु प्रेम से परिपूरित हो, अप्लावित हो, यू वॉन्ट दैट इट शुड बी फ्लडेड विथ गॉड्स लव, डिवाइन लव, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे से राग नहीं, परमेश्वर से अनुराग। राग शब्द भूल जाइए। सो सीज माँ सुमित्रा लक्ष्मी से कहती है, राग रहित स्वप्न में भी इसके वशीभूत नहीं होना। तेरे लिए शब्द है अनुराग, और अनुराग राम से होता है, संसार से नहीं। संसार से राग होता है जिसे मैं छोड़ने के लिए कह रही हूं। रोष कभी उन पर, मां सीता पर, कोई दोनों की कोई आज्ञा है इस प्रकार की आपको अच्छी नहीं लग रही, रुष्ट नहीं होना, क्रुद्ध नहीं होना। मां का कई ने क्या किया है उन पर भी क्रुद्ध नहीं होना। तेरा स्वभाव है क्रुद्ध, छोड़ दे इसको। रोष इसका भी त्याग कर। ईर्ष्या सब कुछ पा गया भरत, मैं जंगल में हूं, घर बैठा बैठा पा गया सब कुछ, उसके प्रति तेरे मन में कभी ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। सब अपना अपना मुकद्दर पाता है, भगवत कृपा से पाता है, किसी का हिस्सा न कोई आज तक ले सकता है, जबरदस्ती लेता है तो उसे भुगतना पड़ेगा, न कोई ले सकता है न किसी ने आज तक लिया है, सब अपनी अपनी प्रारब्ध खाते हैं। संपत्ति का बंटवारा तो हो सकता है देवियों सज्जनों, प्रारब्ध का बंटवारा नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है बस वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना लिखा है। मत सोचिएगा मेरे पुरुषार्थ से ये हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की है, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, बिल्कुल नहीं। आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था, वह आपको मिल गया। घर में बच्चों की तरफ से अपमान मिलता है, आपकी अपनी करनी है, उसका फल आपको मिल रहा है। बच्चा तो पात्र निमित्त है, दोषी है तो आपके अपने कर्म, आपके अपनी प्रारब्ध। संत महात्मा देवी सज्जनों ईर्ष्या के लिए कहते हैं, साधक में ये लेश मात्र भी नहीं आनी चाहिए, भक्त में ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं आनी चाहिए। आ गई तो आपकी प्रगति वही, आध्यात्मिक प्रगति वही ठप कर देगी। वेरी पावरफुल, परहैप्स मोर पावरफुल देन ईगो फॉर ए साधक। भक्त के लिए ईर्ष्या जितनी हानिकारक है इतना ईगो नहीं है, ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति वही रोक देगी। संत महात्मा दो साधक मात्र इतना ही नहीं कहते, चलो जो रुक गई है वह चलेगी, यदि ईर्ष्या चली जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति आगे होगी भी, प्रगति होगी भी, लेकिन संत महात्मा इतनी सी बात पर ही नहीं टिकते। वे कहते हैं ये ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसी भयानक है कि आपकी पिछली की हुई कमाई को नष्ट कर देती है, यदि कंप्लीटली नहीं तो पार्शली ये आपकी की हुई कमाई को खा जाती है। इसके अंदर तो साधकों यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे। धन्यवाद।